તારીખ 28/3/1991 શ્રી સમયસર ગાથા 144 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 2
ऐसे अखंड प्रतिभास में अनंत विज्ञान घन परमात्म स्वरूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है तब उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। कि सभी जगह अल्प विराम कर करके सारे कथन को एक वाक्य में पूरा किया है, इसलिए हमने ये पूरा पढ़ा कि कहीं पूर्ण विराम नहीं आता है। तो पहले पूरा वाक्य हमारी समझ में आया, अब एक एक बात को हम समझें। प्रथम सूत्र ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना, इसका मतलब क्या? सूत्र ज्ञान मैंने द्रव्य सूत्र मैंने अनुभवी धर्मात्मा की वाणी, चतुर्थ गुण स्थान वृत्ति सतपुरुष ज्ञानी पुरुष के लेकर के पंचम गुण स्थान वृत्ति हो, षष्ठम गुण स्थान वृत्ति हो या तेरहवें गुण स्थान वृत्ति हो, बीच में सात इससे कुछ अच्छी भी हो शैली से, इस वाणी से क्या आत्म स्वभाव कहा जाए तो उसको द्रव्य श्रुत कह सकते हैं क्या? कि ये द्रव्य श्रुत नहीं है, ये द्रव्य श्रुत नहीं है और ऐसी वाणी किसी को भाव श्रुत में निमित्त भूत भी नहीं हो सकती। इसलिए निमित्त भूत नहीं हो सकते कि इसमें निमित्त होने का की योग्यता नहीं, न इस कहने वाले के परिणाम में योग्यता है, फिर इसी के अनुसार इसी इस भाव के अनुसार इस भाव के निमित्त से निकलने वाले वाणी में भी ऐसी योग्यता है। रुपया तो रुपया होता है दिखने में, लेकिन आवाज से जो चांदी के आते थे ना पहले, अभी के नहीं है, जो उसको आवाज से पहचाने जाते थे भले कितनी ही नकल की हो, लेकिन अगर वो चांदी का नहीं हो, दिखाई देवे भले चांदी का लेकिन आवाज बता देगी कि ये चांदी का नहीं है। वैसे ज्ञानी के वाणी में कुछ रणकार होता है तो कुछ दूसरे ढंग का होता है। तो ये जो रणकार जिसको कहते हैं, आवाज जिसको कहते हैं, उसको अंतर्ध्वनि कहते हैं, अंडरटोन कहते हैं, वो दूसरा प्रकार का होता है। और वैसे ही नकल करने वाले में ये बात संभव नहीं है, ये प्रकार संभव नहीं है, ये टोन नहीं आ सकता, क्योंकि उनके पास ये आत्मरस नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से विचार करें तो ज्ञानी की वाणी अपने आत्म स्वभाव पर बीस कहते हैं, आप क्या कहते हैं, जोर कहते हैं, बीस कहते हैं,
दबाव
कहते हैं, उसी अवस्था में निकलते हैं। जब ये आत्म स्वभाव दर्शाते हैं तो उसका उस पर एक बीस आती है और वाणी साथ साथ निकल जाती है। जबकि जिसने आत्म स्वभाव देखा नहीं, अनुभव में आया नहीं, उसका रस पैदा हुआ नहीं, उसका रस का आस्वादन किया नहीं, उसकी परिस्थिति ऐसी होती है कि उसकी बीस जो है वो राग पर रहती है और राग का जो कषाय है वो कषाय की बीस में से वो वाणी निकलती है। कितना अंतर है। एक अकषाय स्वभाव के आधार में से निकली हुई वाणी है, एक कषाय परिणाम के अवलंबन से, आधार से, जोर से निकली हुई वाणी। बहुत बड़ा अंतर है। पूर्व पश्चिम जैसा उस प्रकार की वाणी में जो अंतर है, उस अंतर को समझ करके अगर इसकी पहचान हो तो ऐसा द्रव्य श्रुति ही दूसरे सुनने वाले जीव को भाव श्रुति में निर्मित हो सकता है। एक बात तो कही, द्रव्य श्रुत शब्द से वाणी किसकी सुननी, कि जिससे हमें निमित नैमित के संबंध से आत्मलाभ हो सके। इसलिए प्रथम द्रव्य श्रुत के श्रुत ज्ञान के अवलंबन मैंने निमित्त से, ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, स्वभाव का निश्चय करके उतना नहीं कहा, लेकिन ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, स्वभाव आत्म स्वभाव का निश्चय करना मात्र उतनी बात नहीं कही, लेकिन ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके इसलिए कहा कि ज्ञान लक्षण के द्वारा, ज्ञान लक्षण के द्वारा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा में अनंत गुण समाविष्ट है। अनंत गुण में कौन कौन गुण हैं, कैसे कैसे गुण हैं, इसके भेद प्रभेद भले ही मालूम न हो, लेकिन ज्ञान स्वभाव कहते ही पूरा पूरा जैसा है वैसा, अगर इसके भेद प्रभेद समझना चाहें तो समझ सकते हैं, कहना चाहे तो कह सकते हैं कुछ हद में, फिर भी इन भेद प्रभेदों से हमारा प्रयोजन नहीं है। सिर्फ समझने के लिए थोड़ा बहुत प्रयोजन होता है, लेकिन पहचान में ये प्रयोजन नहीं है, या पहचान में ऐसे भेद ज्ञान में रहते नहीं, न तो अनुभव में रहते हैं न तो पहचान में रहते हैं। जैसा भी पहचान में आता है, निर्णय मैंने यहाँ पहचान लेना, जैसा पहचान में आया है वैसा ही अनुभव में आता है। ऐसा कभी नहीं होता कि अनुभवी जीव ऐसा कहे कभी कि हमने पहचाना था वो तत्व में और हमारे अनुभव में आया वो स्वभाव में कुछ अंतर है, कुछ फर्क हुआ। विषय में फर्क नहीं है, विषयी में अवश्य फर्क है। जब पहचान होती है तो पहचान करने वाली जो अवस्था है वो सविकल्प परोक्ष ज्ञान की अवस्था है। और जो अनुभव होता है वो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान की अवस्था है। दोनों मति शुद्ध ज्ञान की अवस्था ही है, फिर भी वो दोनों में बड़ा अंतर है। हमें तो यहाँ पर उतनी गहराई में जाना है कि ज्ञान स्वभाव आत्मा की पहचान कैसे होवे, उसका निश्चय कैसे होवे।
इसके पहले प्रश्न ये होता है, किस भूमिका का व्यक्ति में ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय कर सकता है।
ठीक बात है, कल ये बात थोड़ी चल चुकी थी, हम दोहराते हैं कि जिस जीव ने अपने जीवन के ध्येय को बदल दिया, दो ही ध्येय होते हैं संसार के जीवों में, एक तो संसारार्थ और एक तो मोक्षार्थ, तीसरा ध्येय नहीं होता। या तो जीव मोक्षार्थी होता है या तो संसारार्थी होता है। अनादि से हम संसारार्थी तो है ही, बिना ध्येय तो हम कभी चलते नहीं, ध्येय पूर्वक ही हम चलते हैं, परिणमते हैं। ये ध्येय सारा का सारा बदलना होता है, बदलने का होता है। जिस जीव ने प्रारंभ ही ऐसे किया, शुरुआत ही ऐसे कही करें कि मुझे पूर्ण शुद्ध होना है, अशुद्धि रूप जो मेरी दशा में कषाय कलंक है, वो कलंक का मामूली एक कण रूप दाग है, वो मैं स्वीकार नहीं करने वाला, उसे मुझे उसका स्वीकार नहीं है। क्या थोड़ी भी विष्ठा को कोई अपने किसी भी अंग में रखने के लिए थोड़े कण हो तो, मामूली हो तो नहीं रखेंगे। ये मलिन परिणाम है, इसका एक कण भी हमारा निष्कलंक स्वरूप है। जब जब है ही हमारा स्वरूप निष्कलंक, हम कलंक को कैसे पसंद करेंगे। ऐसा जिसका ध्येय हो, ये हमारा जीवन का ध्येय अगर हो तो, ये सब्जेक्ट कंडीशन है, ये शर्त पहली है। अगर ये शर्त नहीं है तो ये सब बातें मात्र कहने की, सुनने की सिवा कुछ नहीं है, बातें ही बातें हैं और कुछ उसमें नहीं है। फिर यही परिस्थिति से कुछ और भी इस आगे के स्टेज में प्रसार होने का होता है। काफी आगे बढ़ करके जब दर्शन की मात्रा अनुभव ठीक तरह से मंद होता है, और जब ये दर्शन हो जो ज्ञान को अधिक से अधिक मलिन करने वाला है, कषाय रस जिससे ज्ञान कषाय से रंजायमान होता है, इसमें भी कुछ फर्क हुआ। निर्मलता मोक्ष की भूमिका के ज्ञान में हुई, तब ये निर्णय का निश्चय का स्टेज आता है। कैसे आता है ये तो हम विचार करेंगे, इसका यही तो विषय आज के एजेंडा पर है। लेकिन इतने हद तक आवे उसकी बात है, तो दर्शन किसका मन होता है कि जो देव गुरु शास्त्र जो सच्चा है, जो सत्पुरुष है, अनुभव पुरुष है, इनके समीप आते हैं तो अवश्य दर्शन हो कुछ अंश में मंद होता है। आगे जा करके जब अपना ध्येय परिवर्तन करता है तो भी कुछ अधिक अंश में दर्शनों और होता है। जब यहां से आगे चलने का होता है तो स्वरूप प्राप्ति की इस ध्येय के वशात तीव्र भावना, अपूर्व भावना पैदा होती है कि जीवन में मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति करनी है, यही मेरा एक मुख्य काम है, यही मेरे सभी कार्यों में फर्स्ट प्रायोरिटी है, बाकी सब काम की लास्ट प्रायोरिटी है, दो ही प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी नहीं है, फिर थर्ड प्रायोरिटी, फिर फोर्थ प्रायोरिटी, ऐसा नहीं, दो ही है। तो इस भावना के साथ साथ एक नया चिन्ह, एक नया फैक्टर अवस्था में पैदा हो जाता है जिसे हम कहते हैं जागृति। जागृति की शुरुआत होती है कि हमें हमारे भावना के अनुकूल चलना है, हमारी भावना से विरुद्ध हमें नहीं चलना है, ऐसे एक आत्म जागृति, स्वयं के हित के विषय में एक जागृति आती है। तो जिस अंश में, जिस अनुपात में ये जागृति होती है उतनी ही मुमुक्षुता समझो। भले ही हम कितने भी शास्त्र पढ़ें, शास्त्र में हमारा दिमाग कितना ही काम करता हो, लेकिन जहां तक ये भावना पूर्वक जागृति नहीं है, मुमुक्षुता आई नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और मुमुक्षुता भी जिस अंश में जागृति आई है उतनी ही आई है, इससे ज्यादा नहीं आई है, ऐसा समझना चाहिए। जब ये जागृति रहती है तो जो भी बात पारमार्थिक विषय होती है, आत्मकल्याण के विषय की होती है, आत्मा के अकल्याण के विषय की होती है, मैंने प्रयोजन की होती है, उस प्रयोजन के विषय में ये जागृति वाला मुमुक्षु जीव का दृष्टिकोण बहुत सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो जाता है। सूक्ष्म हो जाता है इसलिए कि थोड़ा भी सूक्ष्म भी प्रयोजन और अप्रयोजन भूत में वो बाइफर्केशन कर सकता है कि ये मेरा, उससे मुझे अनुसरण करना है, उससे मुझे अनुसरण नहीं करना है, ये विधि निषेध चालू हो जाता है। हम इसको सम्मत करेंगे, इस बात को हम सम्मत नहीं करेंगे, वो बात को सम्मत करेंगे, वो बात को सम्मत नहीं करेंगे, बात है अपने परिणाम के विषय की, या सामने जो विषय आता है शास्त्र में से उसमें मेरे प्रयोजन की बात कौन सी है। ये शास्त्र है, ये तो समुद्र है, बहुत बातें हैं, सभी बातें हमारे काम की नहीं होती। सारे शास्त्र का जो उपदेश है वो विभिन्न प्रकार की योग्यता वाले जीव को जो शासन में आए हुए हैं उनको आचार्यों ने अपने नजर समक्ष रख करके बहुत सी बातें लिखी हैं, कही हैं। सभी दवाएं एक मरीज को जैसे लागू नहीं हो सकती, अगर पिला देवे खिला देवे तो मर जाए, और एक दवा भी सभी मरीज को लागू नहीं हो सकती। इस तरह जब ये प्रयोजन की दृष्टि सूक्ष्म और तीक्ष्ण होती है, धारदार तेज होती है, तभी वो जीव ये ग्रंथ में से मेरे काम की चीज कौन सी है उसको पकड़ सकता है। वरना तो सभी गाथाओं का अर्थ, भावार्थ, नयार्थ, मतार्थ आदि आदि धारणा कर लेता है, सभी विवेक्षाओं को अपेक्षाओं को समझ लेता है, उतनी शक्ति भी है श्लोषण में, परंतु उसको ये पता नहीं है कि इसमें मेरी दवा कौन है। यहाँ एक उलझन हो सकती है कि हम तो रहे अनादि के अज्ञानी, हमें कैसे पता चले कि ये हमारे काम की है ये हमारे काम की नहीं है, उतनी तो हमारी शक्ति भी है, करेंगे क्या। तो कहते हैं कि जब तुमको कौन सी दवा लेना, कब लेना, किस मात्रा में लेना, आगे पीछे कहाँ कैसे सावधानी रखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, ऐसा जब होता है प्रिस्क्रिप्शन में, वैसे डॉक्टरों के पास जाना होता है, वैसे अनुभवी पुरुष के चरण में चले जाना, ये बात अनुभवी पुरुषों ने बिल्कुल निष्प्रह हो करके एकमात्र कारुण्य बुद्धि से कही कि तुम सत्पुरुष के चरण में जाना, खुद सत्पुरुष होते हुए ऐसा कहना अच्छा तो नहीं लगता बुरी दृष्टि से, लेकिन भली दृष्टि से तो अच्छा ही है कि एक मुमुक्षु के हित के लिए सत्पुरुषों ने ऐसा कहा कि अगर तुझे ऐसी पैनी दृष्टि नहीं हुई, सूक्ष्म दृष्टिकोण साध्य नहीं हुआ, तो तुझे हम सेफ गार्ड कर देते हैं, तेरी सुरक्षा भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि तुम सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर तुम सत्पुरुष के चरण में चले जाता तो फिर कोई आपत्ति नहीं है, फिर तुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। सद्गुरु की ओथ में फिर मुमुक्षु निर्भय है और निशंक है। ऐसा है कि एक विवेक है, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है, यह एक विवेक है कि जिस जीव को अपने उपादान की भलाई चाहिए, उन्होंने ये एक विवेक किया कि मुझे किसका संग करना है, किसका संग मुझे नहीं करना है। ये बात विवेक की है, निमित्ताधीन दृष्टि की नहीं है। इसलिए ऐसे मुद्दों को विवाद में नहीं ले जाना चाहिए। जब ऐसा सत्पुरुष के संग में, ये संग तो हमेशा उपलब्ध नहीं होता, कभी मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, लेकिन मिले तब तो ठीक है, नहीं मिले तब तो इनकी वाणी शास्त्रारूढ़ है, उनका संग में रहना है हमें। इसमें से जो भी बात जागृति पूर्वक समझ में आती है तो प्रयोजन के विषय में हमारे जो जो उदय पूर्व कर्म के अनुसार क्रमशः आते रहते हैं, ये या तो शुभ होते हैं या तो अशुभ होते हैं, उसमें दो ही विभाग है, तीसरा विभाग नहीं होता। कुछ भी हो कोई चिंता नहीं है, अशुभ का भी हो या शुभ का हो, हमारे लिए तो या हमारे प्रयोग करने के लिए तो दोनों एक से ही साधन है। उस उदय में मुमुक्षु जीव जो भी उनको समझ हुई है उस समझ को लागू करता है, अप्लाई करता है, और जो भी अपने समझ और अपने परिणमन में अंतर है इस अंतर को तोड़ने का एक प्रयास करता है। जैसे कि हमने बहुत मोटी बात समझी है कि ये शरीर से हमारी आत्मा भिन्न है, तो ये समझ में कोई हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही है। वास्तव में शरीर एक परमाणु का पिंड है, जो सभी परमाणु जड़ ही जड़ है, इसमें कोई परमाणु चैतन्य स्वरूप ही नहीं है। हमारी आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है, ज्ञान स्वभाव है, प्रत्यक्ष अज्ञान का परिणमन हमें समझ में आता है, समझ में आता है, अनुभव में आता है वो दूसरी बात है, समझ में आता है कि हमारी आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है। बुद्धि हम बहुत लगाते हैं, बुद्धि से बहुत काम करते हैं, इसलिए ज्ञान हमारे में है, ये बात हम समझ सकते हैं। जब श्राता या अशाता दोनों में से एक तो उदय चलता ही है, ये शुभ और अशुभ दो प्रकृति है, इसकी तीसरी प्रकृति श्राता अशाता में नहीं है। मैंने सभी प्रकृतियों में दो विभाग है, एक शुभ के एक अशुभ के। फिर इसके पेटाभूत कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, हमारा प्रयोजन कुछ भेद प्रभेद से उतना नहीं है। हमें शुभ का उदय अच्छा लगे और अशुभ का उदय हमें अच्छा नहीं लगे, ये हमारा भ्रम है। भ्रम मतलब हमारा प्रयोजन नहीं होता, ना राग की पर्याय है और ना द्वेष की पर्याय है, हम उपेक्षा करके दूसरे कॉलम में चले जाते हैं, ये कॉलम छोड़ देते हैं पढ़ने के। वैसे ही जिससे हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी एक परमाणु से लेकर किसी भी पिंड के साथ तक, ये सारा का सारा परमाणु किसी भी अवस्था साता की हो या असाता की हो, हमारे लिए उपेक्षा का विषय बनना चाहिए। जब ये उपेक्षा नहीं रहती, नहीं होती और अपेक्षा रहती है कि असाता हो तो मिट जाए तो अच्छा है, साता हो तो ऐसे बना रहे तो अच्छा है, तो हमारा उन्नत जो हमारी समझ में आया है उससे हमारा अनुभव बिल्कुल विरुद्ध चल रहा है। इस जगह हमें जागृति आनी चाहिए कि ये अंतर क्यों, हमें कौन सा भ्रम हुआ, किस प्रकार का भ्रम हुआ, किस कल्पना से हमने ठीक पढ़ा हुआ या अठीक पढ़ा हुआ। ये जो हमारा अनुभव है उसको पकड़ करके, साथ ही हमारी समझ है उसको लागू करके, साथ ही हमारी ज्ञान की प्रवृत्ति को भी अनुभव में ले करके कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका एक अवलोकन का अभ्यास चालू होता है। इस प्रकार से सभी उदय में, सभी प्रकार के उदय में, दृष्टांत में एक ले लिया, सभी प्रकार के उदय में एक क्रम चालू होता है।
जी, इस उपेक्षा में चारित्र की अपेक्षा भेद है क्या?
चारित्र की अपेक्षा भेद है, श्रद्धा की अपेक्षा भेद है, लेकिन मिथ्यात्व के अवस्था में दर्शन मोह की प्रवृत्ति मुख्य है, चारित्र मोह की इतनी चिंता करने की आवश्यकता हमें नहीं है। जब दर्शन मोह विद्यमान है तो फिर चारित्र मोह की क्यों सोचे, जिसको हमें पहला हटाना है उसको तो हम देखे नहीं, समझे नहीं, इसके प्रति हम लड़े नहीं, पर चारित्र मोह का विचार करें, ये क्रमबद्ध बात है। जिस क्रम से हमें चलना हो उस क्रम से हमें चलना चाहिए। तो ये भेद हम समझ लेते कोई बात नहीं है, लेकिन अब तो कार्यान्वित ये बात करनी है, तो जिस पद्धति से हो सकती है उस पद्धति का विचार चलता है। तो उस प्रक्रिया में ये प्रयोगात्मक प्रक्रिया है। क्यों इसको प्रयोगात्मक प्रक्रिया कहते हैं, कि विचार विकल्प होते हुए भी हम हमारे अनुभव को साथ में लेते हैं, इसलिए इस प्रकार के मुख सोच पूछ के जीवन में परिणमन में जीवन में है परिणमन क्या अंतर हुआ कि सामान्यतया हम शास्त्र के अभ्यास करने वाले मुख सोच वैचारिक भूमिका से आगे जा करके इस अनुभव की भूमिका में प्रवेश नहीं करते मैंने प्रयोग की भूमिका में प्रवेश नहीं करते। ये प्रक्रिया दो प्रकार के परिणमन में चलती है, एक विचार पद्धति एक अनुभव पद्धति। तो हमें जब अनुभव तक पहुंचना है हमारी विचार पद्धति के साथ साथ अगर अनुभव पद्धति नहीं रही तो हम विचार के विषय में कहीं भी उलझते रहेंगे, विकल्प वृद्धिगत होते रहेंगे, भोग संज्ञा से समझते रहेंगे फिर भी भोग संज्ञा नहीं मिटेगी और अनंत अनुभव पद्धति में नहीं आएंगे तो अनुभव की सिद्धि नहीं होगी, अनुभव को साध्य नहीं होगा। इसलिए अनुभव के लिए विचार से आगे जा करके अनुभव पद्धति में आना जरूरी है। ऐसे प्रयोग से के साथ साथ जिसका परिणमन चलता है ऐसे जीव को लगातार अगर ये प्रयोग चालू रहा तो उसका दर्शन में और मंद होता है, जो मंद हुआ है उसका अनुभाग और दूरता है और कुछ ठीक मात्रा में जब दर्शन में मंद होता है और ज्ञान की निर्मलता होती है तो ये स्वरूप का भाव शासन होता है। जैसा त्रिकाली ध्रुव अनंत गुण का अभेद पिंड आत्म स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, तो एक ज्ञान लक्षण से सारा का सारा एक निर्मल ज्ञान में प्रतिभास इसको आता है, जैसा है वैसा भास उसको प्रतिभास कहते हैं, ऐसा प्रतिभास को यहाँ निश्चय कहते हैं। पर ये प्रयोग से साध्य है, मात्र विचार से साध्य नहीं है कभी भी दिन काल में। तो हम ये समझ बैठे हैं शास्त्र के अध्ययन करने वाले कि हम आत्मा के द्रव्य क्षेत्र काल भाव समझ लें, उसका द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था हम समझ लें, उद्भाव द्वि ध्रुव कैसे होता है वो समझ लें, उसका अस्तित्व कैसा है, गुण गुणी भेद उसके धर्म जो कैरेक्टर्स हैं उसको भी समझ लें। मैंने ठीक मात्रा में अगर ये बात समझ में आ जाती है तो हम समझते हैं कि हमको आत्मा का निश्चय हुआ, ये निश्चय सही नहीं है, ये सच्चा निश्चय नहीं है, ये योग संगना में रह करके हुआ ऐसा एक निश्चय संबंधित नया भ्रम है। क्या है? नया भ्रम है, ऐसा भ्रम आगे नहीं हुआ था इसलिए हम कहते हैं कि ये नया अशाता मुझे हुई, ये तो भ्रम है ही, लेकिन आत्मा का निश्चय हुआ और ये शास्त्र के अनुकूल हमारी समझ है इसलिए सही है, ये एक नया भ्रम पैदा हुआ है। माफ कीजिए थोड़ी कठोर भाषा लगेगी लेकिन ये सच है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। क्योंकि हमें ऐसा निश्चय होने पर भी हमारी समस्या ऐसी की वैसी की वैसी ही रही है इसलिए ये भ्रम है, ये भ्रम है, इसका सबूत है, इसके लक्षण है, फालतू बात नहीं है, इसके सबूत है कि ये भ्रम कैसे है। कि जिसको स्वरूप का यथार्थ निश्चय होता है, यथार्थ भाव भाषण होते हैं, इनके भी कुछ स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, खास लक्षण होते हैं, उसकी खास परिस्थिति होती है। और जिसके ये ब्रह्म वाला निश्चय होता है, इसकी भी कोई खास परिस्थिति होती है। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग परिस्थिति है। दोनों को अगर हम समझ सकते हैं तो हमको अच्छी तरह मालूम पड़ जाता है कि ये ब्रह्म क्या है, सही क्या है। तो हम पहले तो इस पक्ष को ले लें कि ये ब्रह्म क्यों और कैसे। कि हम मानते तो हैं कि हमने आत्मस्वरूप को समझा है, निर्णय में भी लिया है, क्योंकि निर्णय करने का तो हमारा उद्देश्य था पठन पाठन श्रवण आदि से कि स्वरूप आखिर में कैसा है। और जब हमारी समझ में आया, ख्याल में आया, निर्णय भी हुआ कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो जिस ग्रंथ में से हम पढ़ते हैं, इसमें एक बात बहुत प्रसिद्ध रूप से आती है कि यह आत्मस्वरूप है, ये निर्विकल्प स्वरूप है, जिसका निश्चय हुआ है वो निर्विकल्प स्वरूप है, वचनातीत है, विकल्पातीत है, मनातीत है। ऐसा हमारे सामने ये बात आते हुए भी हम हमारे विकल्प में, हमारे मन में इसको पकड़ लेते हैं। जिस विकल्प में, जिस मन के आश्रय से ये ग्रहण हो नहीं सकता, या ग्रहण करने की जिसमें कैपेसिटी नहीं है, योग्यता नहीं है, इससे वो कैसे ग्रहण होगा जिसमें ये ताकत नहीं है। कि जिसमें ये ताकत नहीं है, फिर भी हमने विकल्प की मर्यादा में, मन की मर्यादा में मनातीत विषय को पकड़ लिया। ये गलती हुई कि नहीं हुई, क्या अवश्य हुई। दूसरा कि जब हमारे समझ में ये आत्मस्वरूप आता है, हमारे निश्चय में आता है, तो ये आत्मस्वरूप तो अंतर्तत्व स्वरूप है, ये अंतर्तत्व है, बहिर्तत्व नहीं है। स्पष्ट हमारे समझ में है कि एक समय की पर्याय भी इसके आगे बहिर्तत्व है। मित्र दृष्टि प्रकाश में सुगम निषाद ने कहा कि जब आत्मा अंतर्तत्व है, शुद्ध पर्याय भी बहिर तत्व है। जब शुद्ध पर्याय को अंतर तत्व कहते हैं, उसके साथ जो अशुद्ध पर्याय है, भले ही शुभ राग की हो, आत्मा का विकल्प हो, बहिर तत्व है। जब ये राग वाले पर्याय अंतर तत्व ऐसा कहा जाए, तो उसके निमित्त भूत जो उदय वाले परमाणु है, कर्म प्रकृति का उदय है, उसको बहिर तत्व कहेंगे। कर्म के उदय को जब कर्म के उदय को अंतर तत्व कहते हैं, तो नो कर्म रूप संयोग को बहिर तत्व रूप कहेंगे। तो एक को ही अंतर तत्व कहते हैं, दूसरे को उसी वक्त कभी इसको भी बहिर तत्व कहते हैं। तो ये बात नहीं अपेक्षा होगी, लेकिन अंतर तत्व जो अपना स्वरूप हो, किसी भी अपेक्षा से या विविक्षा से हम बहिर तत्व नहीं कह सकते, न किसी ने कभी कहा भी है। इसलिए इसका ध्यान, इसका स्थान तो अपने आप में त्रिकाल अंतर तत्व रूप ध्रुव ही है। जब अंतर तत्व को निर्णय में लेना है, निश्चय में लेना है, तो अवस्था को इसके सन्मुख हुए बिना कैसे हो सकता है। इसका ये मतलब साफ हो गया कि ज्ञान को स्वयं सन्मुख हुए बिना ये निर्णय कभी नहीं हो पाता। जब तक ज्ञान मनाश्रित रहता है तब तक दूसरी इंद्रियों का तो व्यापार है ही नहीं। इसमें पांच इंद्रियों का तो व्यापार छूट जाता है। एक मन में आत्मा का विकल्प विचार चलता है, उस वक्त ये प्रतिभास आता है। अब इसमें दो प्रकार है। एक प्रकार यही है जो अनादि से चालू है कि हमारे सभी विचार अनादि से राग का आधार अवलंबन का त्याग नहीं करके ही होते रहते हैं, चाहे वो आत्मा के हो या अनात्मा के हो। ये हमारी विचार पद्धति हमेशा हमेशा चालू रही। तो यहाँ एक सही आत्मा के भाव वासन में, ये परिस्थिति में भाव वासन कभी नहीं होता। भले ही विकल्प चालू हो तो भी एक परिस्थिति दूसरी होती है। ये परिस्थिति ऐसी है कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान सामान्य में जो ज्ञान वेदन है उसमें जो स्वभाव अंश व्यक्त है, खुला है, उसके आधार से, पर उस वक्त कुछ अंश में राग का आधार छोड़ करके ये प्रतिभास आता है। ये बात गुरुदेव के शब्द में इस अंग के प्रवचन में बहुत साफ आई है। ये प्रवचन भी जो हमारे स्वाध्याय में चल रही है, 144 गाथा का प्रवचन है। ये प्रवचन आज से 46 साल पहले संवत 2000 में गुरुदेव ने राजकोट में किया था। राजकोट में इस गाथा पर जब प्रवचन चल रहा था, गुरुदेव के धर्मसभा में पूज बहनश्री उपस्थित थे। उन्होंने प्रवचन को झेला है और ये प्रवचन उन्होंने लिखा है। जब हमने ये प्रवचन इस ग्रंथ में पढ़ा, इस अंक में पढ़ा, तो पहले ही हमने सारे लंबे प्रवचन में ये निर्णय निश्चय होने वाली बात को ही पढ़ा, दूसरी बात को हमने नहीं पढ़ा। फिर पूरा का पूरा आदि अर्थ पढ़ लिया, लेकिन पहले हमने ये पढ़ा कि निर्णय होने के बाद गुरुदेव ने कैसे कही। हमने तो सुनी भी है, लेकिन हमने सुने वो तो काफी, हम तो लेट हुए हैं इसके बाद, 15-17 या 20 साल के बाद हमने तो सुनी होगी, लेकिन हमारी एंट्री के पहले 20 साल पहले जो ये प्रवचन चल चुका है और कुछ वैंसरी जैसे श्रोता ने सुना है, श्रोता भी मामूली नहीं है, वक्ता भी मामूली नहीं है, जो दोनों साधारण नहीं है, असाधारण है, तो बात किस ढंग से आई हम देखे तो सही। क्योंकि हमारे मुमुक्षु समाज में और विद्वान वर्ग में भी ये बात शायद है तो प्रसिद्ध, जब छप चुकी है तो ये तो हजारों की तादाद में छपी है, पर आगे भी इसके ग्रंथ निकल चुके हैं। गुरुदेव के जो समयसार प्रवचन के 5 भाग है, इसमें वो आ चुके हैं, बात इसमें से ही लिए, इसकी नकल ही है, उस ग्रंथ उस प्रवचन ग्रंथ की ही नकल है। तो हमने ये पढ़ी, देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं इसमें, जो बात हमने हमारे शब्द में कही है गुरुदेव के शब्द में हम पढ़ते हैं कि ज्ञान स्वभाव श्रुत ज्ञान का अवलंबन द्वारा ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करना। गुजराती में मैं सीधे हिंदी में बोलता हूं, वह निश्चय ऐसा अपूर्व करना कि जो निश्चय के फल में आत्मानुभव होवे। ये निश्चय अनन्य कारण है, ये निश्चय निश्चय कारण है। एक रूप से ऐसा होना ही चाहिए ऐसा हुए बिना कभी आत्मानुभव होता नहीं है। श्रीमद जी ने अपने 751 पत्रांक में उसको तो संकेत बोला है, और फिर संकेत बोल करके ऐसा बोला, कहा कि ये संकेत का कारण होने से, कारण में कार्य का उपचार करके हमने संकेत कह दिया है, लिख दिया है। तो ऐसे जिसको संकेत भी उपचार से कह सकते हैं, इसकी बात सुनते हैं। निश्चय के फल में आत्मा का अनुभव हुए ही, केवल ज्ञान हुए, सिर्फ अनुभव नहीं हुए, केवल ज्ञान हुए, केवल दर्शन हुए, अनंत गुण प्रकट हुए। इस निश्चय के फल में देखिए निर्णय कैसा है। ये निश्चय, ये निर्णय निर्वाण पद का कारण है, केवल ज्ञान का कारण है, मात्र स्वानुभव का कारण है, इतनी बात नहीं है। अगर स्वानुभव का कारण है तो कहने की आवश्यकता भी नहीं है कि ये केवल ज्ञान का कारण है, लेकिन इसकी कीमत दर्शाने के लिए कहने में आता है। आगम द्वारा या सदगुरु द्वारा, दोनों अनुभवी पुरुष की मानी है। निश्चय करना, इस निर्णय में राग का अंश अभाव होकर के निर्णय होता है। क्या शब्द पड़ा है गुरुदेव का? इस निर्णय में राग का अंश अभाव होकर के निर्णय होता है, परंतु निर्णय के समय बुद्धिपूर्वक के सभी विकल्पों छूटते नहीं है। मैंने चालू विकल्पात्मक दशा में राग का कुछ अंश अभाव होकर के निर्णय होता है, स्वरूप में जम जाता नहीं, किंतु निर्णय करता है तो उस वक्त भी आत्मा से आत्मा का निर्णय करता है, राग से नहीं करता है, ज्ञान से आत्मा का निर्णय करता है, ज्ञान के आधार से अवलंबन से आत्मा का निर्णय करता है, तो आत्मा से आत्मा का निर्णय करता है, प्रकट स्वभाव अंश की प्रतीति से आत्मा का निर्णय करता है, ऐसी बात कही। ये श्रीमद् जी के शब्द है। स्पष्ट अनुभवांश प्रतीति, उसको हम कुछ कारण वशात सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा समझे। मन और राग की गौणता करता है, आत्मा को अधिक करता है और राग को गौण करता है। उतने अंश में राग से छुटकर स्वयं अधिक होकर के आत्मा से आत्मा का निर्णय करता है, परंतु जब स्वरूप में जम जाता है तब बुद्धिपूर्वक के विकल्प छूट जाता है, बुद्धिपूर्वक मन का निमित्त छूट जाता है और चिद रूप चिदानंद में उपयोग लीन होता है, उसको तो हम सम्यक दर्शन और स्वानुभव कहते हैं। उतनी बात आई है, बहुत साफ बात आई है। तो ये अंक तो सबों के हाथ में पहुंचा है हमारे सारी समाज में, फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता है कि इतना साफ लिखा है तो हम हमारा निर्णय को मिलान तो करें, कि हमारा निर्णय जो हम मानते हैं कि हमने निर्णय किया है तो इस ढंग का है, इस पद्धति का है, इस प्रकार का है या कुछ दूसरे प्रकार का है। तो हाँ, रिपीट करना है करूँ कि यह निर्णय में राग का अंश अभाव होकर के निर्णय होता है, परंतु निर्णय के समय बुद्धिपूर्वक का सभी विकल्प छूटता नहीं, छूट जाता नहीं, मतलब चालू रहता है, स्वरूप में जम जाता नहीं, एकाग्र हो जाता नहीं, निर्विकल्प होता नहीं, किंतु निर्णय करता है उस वक्त भी आत्मा से आत्मा का निर्णय करता है, मन और राग की गौणता करता है, आत्मा को अधिक करता है और राग को गौण करता है। अर्थात अंशतः राग से छुट करके स्वयं अधिक हो करके आत्मा से आत्मा का निर्णय होता है। देखिए आज का समय हो चुका है, इस विषय का तादृश्य चितार कैसा होता है उस पर हम कल थोड़ा विवेचन करेंगे या शाम को लेंगे, अगर कल का साइन कम रहता है तो शाम को भी लेंगे, लेकिन अब जो समय पूरा होता है इस विषय पर थोड़ा और गहनता से विचार करेंगे।